ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூர் அபவுட் டு லிசன் யதி பஞ்சகம் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிதம்பரானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
மா யே நஹி சோச்தி கி தேக்கோ தோ கி தின் பர் கேல்தா ஹை, ஜப் தூத் பீனா ஹோதா ஹை தோ மேரே பாஸ் ஆதா ஹை. கி மா யே நஹி சோச்தி கி அச்சா, ஜப் ஜரூரத் படி, ஸ்வார்த்த கி விருத்தி ஹுயி, தப் தூ மேரே பாஸ் ஆயா. நஹி சோச்தி. வோ தோ உஸ்கா பிரேம் தேக்தி ஹை, வோ தோ உஸ்கா சமர்ப்பண் தேக்தி ஹை, வோ தோ உஸ்கா பாவ் தேக்தி ஹை, அனுராக் தேக்தி ஹை, மாத்ருத்வ கி பிரதி அனுராக் தேக்தி ஹை. குச்ச விசார் நஹி கர்தி கி இத்னி தேர் கஹா தா. வோ மா ஜான்தி ஹை கி தோ ஹி மினட் கே லியே ஆயா பலே ஹி, லேகின் ஜஹா தா தா தோ மேரா ஹி. கி கேல் கஹி பி ரஹா ஹோ, பச்சா தோ மேரா ஹி. कि भले ही दोस्तों के साथ हो, बच्चा बालक तो मेरा ही है. ये मां को भरोसा है, क्या उस परमात्मा को भरोसा नहीं है कि तुम कहीं भी खेल रहे हो तो उसी के. क्या उस ईश्वर को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि तुम कहीं भी भूल गए हो, कि किसी खेल में भूल गए, किसी दोस्त यार के साथ भूल गए, कि परमात्मा के विस्मरण हो गया. तो कि परमात्मा के भूल जाने से, कि परमात्मा को भूल जाने से तुम परमात्मा के नहीं रहोगे, ये बताओ. रहना ही है. करना क्या है? सिर्फ दो मिनट, सिर्फ दो मिनट उसे एहसास करा दो कि हम भूले कहीं भी रहें, जाएं कहीं भी, खेलें कहीं भी, मस्ती कहीं भी करें, लेकिन हैं हम तुम्हारे, हैं हम आपके, आपके अलावा हमारा कोई नहीं. कि जैसे उस बालक के मन में यह भाव दो मिनट के लिए ही सही आए, लेकिन यह आता है कि इसके अलावा कोई नहीं. कि जब उसके ऊपर संकट आए तो संकट में सबसे पहले अगर किसी को याद करता है तो मां को याद करता है. कि गिर जाए, कि ठोकर लगे, और ठोकर लगने पर और जैसे ही गिरे तो गिरने पर सबसे पहले अगर उसके मुंह में कोई शब्द आता है, मां, और वो शब्द बड़ा करुणामय होता है. कि वो हृदय से बोला गया शब्द होता है, कि किताब का पढ़ा हुआ नहीं, उसने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा कि मां कैसे बोला जाता है, उसने किसी सत्संग को ज्वाइन करके नहीं सीखा कि मां को बोलने के लिए कौन सा भाव चाहिए, कि कौन सा प्रेम चाहिए, कि कौन सा अनुराग चाहिए. कहीं ट्रेनिंग नहीं ली. एक बार बोलता है मां, और आप आश्चर्य करेंगे कि वो मां बोलता है और मां को यहां खटकता है कि किसी ने पुकारा. कि मां को महसूस होता है कि मेरा बेटा कष्ट में है. हाँ, उसे लगता है. क्यों? क्योंकि दिल से पुकारा, हृदय से पुकारा, शब्द से नहीं पुकारा. और मैं मानता हूं कि वो बालक मां न कहे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां से पुकार लिया गया, कि वहां की आवाज, कि दिल की पुकार पहुंच गई, कि मां को महसूस हो गया, कि संपर्क हो, कॉन्टेक्ट हो गया, जुड़ गया. मैं कहता हूं दुख में ही सही. एक बार हृदय से पुकारिए, दिल से पुकारिए. ईश्वर की पुकार में फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, ईश्वर की पुकार में बनावटीपन नहीं चाहिए. कि फॉर्मेलिटी दुनिया में कर लेते हो वही बहुत है, कि दूसरों को धोखा दे देते हो वही बहुत है. कि ईश्वर के साथ में धोखा देने का अर्थ तो अपने आप के साथ धोखा देना है. एक बार पुकारो, लेकिन जरा दिल से पुकारो, जरा उसके होके पुकारो, जरा इस भाव से पुकारो. थोड़ा विचार करो कि हे प्रभु, हम दुनिया में पता नहीं कहां कहां भटकते रहे, न जाने कहां कहां खेलते रहे, कि आपको भूल करके रमते रहे, लेकिन आज सोचते हैं कि वास्तव में तुम्हारे अलावा तो कोई नहीं है, कोई नहीं. किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें? ये कह के तो देखो, ये बोल के तो देखो, हृदय से बोल के तो देखो. जितना तुम रोते हो तुमसे ज्यादा वो परमात्मा रोएगा. कि तुम अपनी मां से बोल के देखो कि मां, मैं कहीं भी था लेकिन आज समझ में आता है कि तेरे अलावा तो कोई था ही नहीं, कि तू ही थी। ये जब जब दुख का अनुभव हुआ मुझे तेरी ही याद आई। तुमसे ज्यादा वो तुम्हारी मां न रोए तो कहना, कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे मां के आंख में आंसू ना आए तो, और वो पकड़ के और तुझे अपने गले से लगाए और गले से लगाए, बेटा तू क्या बोल रहा है, मुझे पता है कि तेरे मेरे अलावा तेरा कोई नहीं, लेकिन तुझे पता है तेरे अलावा भी मेरा कोई नहीं। उसके भी ये शब्द ये भाव निकलेंगे, ये बड़ा विलक्षण संबंध है, ये बड़ा विचित्र और विलक्षण जुड़ाव है जिसकी व्याख्या शब्द नहीं है, सिर्फ भाव है, कि जिसको सिर्फ और सिर्फ एहसास किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसको सिर्फ जिया जा सकता है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। मीरा के शब्दों की मीरा का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता, कि मीरा का परमात्मा के साथ संबंध बताया नहीं जा सकता, कि प्रहलाद ने कैसे पुकारा होगा, कि ध्रुव ने कैसे कहा होगा, कि चीरहरण के समय पर द्रौपदी ने क्या सोच करके ईश्वर को पुकारा होगा। हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, कौन सा भाव होगा कि हे प्रभु आप आ जाइए मेरी रक्षा कीजिए, नहीं नहीं, कि सारी दुनिया में सब जगह देख लिया, सबको आजमा लिया। हम दूसरों से कहते हैं कि तुम हमें आजमाओ, लेकिन जरा दूसरों को भी आजमा के देख लो कि तुम्हारे कितने साथ आने वाले हैं। कि तुमको तो हर किसी ने आजमाया, ध्यान रखना, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति को सब आजमाते हैं, कि किसी बिजनेसमैन को कोई नहीं आजमाता, कि बिजनेस के क्षेत्र में भले ही आजमाता हो, लेकिन मैंने अनुभव किया, कि मैंने देखा कि तुम अगर पाप करते हो, कि अधर्म करते हो, कि कुछ बुरे कर्म करते हो, आपके सामने आजमाने कोई नहीं आता, आपका परीक्षण करने कोई नहीं आता, आपको कसौटी पर कसने कोई नहीं आता अगर आप बुरे कर्म करते हो, लेकिन आप अच्छाई का लेवल लगा लीजिए, बस एक बार कह दीजिए, घोषणा कीजिए कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हैं, देखो भीड़ तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, कि तुम्हें नोचने के लिए तैयार रहेंगे लोग, कि तुम्हें गिराने के लिए तैयार रहेंगे लोग, न जाने कितने आजमाएंगे, आपको आजमाने के लिए हजार हैं, लेकिन जरा जिनके ऊपर आपको भरोसा है उन्हें भी आजमा के देख लो। कि द्रौपदी को हजार लोगों ने आजमाया, लेकिन द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, बहुत है हमारे साथ। जब द्रौपदी की आजमाने की बारी आई, सब जगह निराशा लगी, सब जगह कि पितामह भीष्म, तो ये सत्य की दुहाई देने वाले लोग भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ध्यान रखना, मेरा निवेदन, विनम्र निवेदन सुनना, कि अगर आप सोचते हो कि आप परमार्थ पथ पर आगे बढ़े हो, तो कोई आपके साथ आएगा, कि कोई आपका हाथ पकड़ेगा, कि कोई आपको मजबूती देगा, ये अकेला सफर है, अकेले ही चलना पड़ेगा, कि यात्रा में कोई साथ नहीं होता, मीरा को हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, वो अकेली ही थी, कि था तो परमात्मा था, कि जरा सोचो, सत्य की धुरी, धर्म की धुरी, महान विद्वान, धर्म कर्म के जानकार, राजनीति को समझने वाले पितामह भीष्म भी दृष्टि को नीचे किए बैठे हैं, सोचो जरा, कल्पना करो, उन कुछ कौरवों की सभा में पितामह भीष्म नहीं बोल सकते, आचार्य द्रोण नहीं बोल सकते, आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? इस संसार में आज आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के समान कौन दिखाई पड़ता है आपको? कि किससे आप उम्मीद करते हैं कि जब द्रौपदी की रक्षा के लिए, कि द्रौपदी की सहायता के लिए ये धर्म धुरंधर लोग नहीं आ सके, तो दूसरों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये धर्म धुरंधर नहीं आ सके तो दूसरे आपकी क्या मदद करेंगे? किसको आजमाना शेष है, किसको आजमाना बाकी है? और जब भी आपको लगे कि नहीं, अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में, सच्चाई के क्षेत्र में गिरने की संभावना बनी, तो वो मदद करेगा, तो एक बार पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को जरूर याद कर लीजिएगा। कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, ये लोगों के दरवाजे खटखटाओगे ना तो यही कहने वाले हैं कि हम आपकी मदद तो करते, लेकिन क्या कि हम आपका कुछ तो करते हैं लेकिन हमारी मजबूरी है। काश ये मजबूरी पहले समझ में आती तो उनके ऊपर भरोसा करने से अच्छा भगवान पर भरोसा करते। हमने सब पर भरोसा किया और ये बड़ी विचित्र बात है कि हमने सब पर भरोसा किया और सामने वाले ने नहीं कहा फिर भी भरोसा किया। सामने वाले ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, लेकिन हमने किया। और जब उसने आपका काम नहीं किया तो आप कहते हैं हमको तुम पर बड़ा भरोसा था। वो भी सोचता है कि मैंने कब कहा था कि करो, लेकिन तुम कहते हो कि हमने किया था और तुमने तोड़ा, हमारे विश्वास को तोड़ा, भरोसे को तोड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुमने विश्वास कर लिया उसे तो पता ही नहीं था, कि तुमने तो भरोसा कर लिया उसे तो मालूम ही नहीं था, वो तो जानता भी नहीं था कि तुम भरोसा कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? कि माया ने कभी कहा, कि संसार ने कभी कहा, कि दुनिया ने कभी कहा, कि रुपए ने कभी कहा, कि धन ने कभी कहा, कि डॉक्टर ने कभी कहा, कि संसार ने कभी कहा, कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र ने कभी कहा कि तुम मेरा भरोसा करो, कि इस कपड़े ने कभी कहा कि तुम मेरा भरोसा करो? ध्यान रखना, तुम कितना भी विश्वास करो, कितना भी विश्वास करो, ये कपड़ा जहां उलझेगा वहां फटेगा। तुम भले ही कहो कि कपड़े पर मुझे बड़ा विश्वास है कि ये मेरी रक्षा करेगा, ले रक्षा तो करेगा लेकिन जहां उलझा ये तुमको बेइज्जत करने से नहीं छोड़ेगा। कि जहां कोई दाग लगा, कि कोई स्याही गिरी, तो ये कपड़ा ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो इसकी इज्जत की रक्षा करने वाला हूं इसलिए स्याही गिरने नहीं दूं। नहीं नहीं नहीं, कमाल की बात कि जिन पर तुम्हें भरोसा है उनकी भी देखभाल तुम्हें ही करनी पड़ती है। अद्भुत बात है कि आप जिन पर भरोसा करते हो उनका भी रख रखाव आपको करना पड़ता है। इस कपड़े पर जितना भरोसा आपको है ये कपड़ा तभी तक आपका साथ दे रहा है जब तक आप इसका ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान हटाइए, देखिए यही आपके विश्वास को चूर चूर कर देगा, चकनाचूर कर देगा। और उदाहरण सिर्फ कपड़े का नहीं, संसार के सारे संबंधों का है, सारे संबंधों। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा रख रखाव बंद कर दीजिए, फिर देखिए तमाशा दुनिया का। आप कहते हो ये मेरी मां, ये मेरा पिता, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा संबंध, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये कभी साथ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जरा आप केयर करना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखना छोड़ दीजिए, फिर मालूम पड़ेगा कि ये कितने तुम्हारे हैं। वे सब नोचने न लगे तब कहना, जिन संबंधों को जोड़ा था वे सब आकर के कहेंगे अच्छा मुझे तो लगता था कि तू मुझे बड़ा मानता है, अच्छा तो मैं तुम्हें इतना मानता था इसलिए तुम हमें मानते थे। सारा संसार ऐसा ही है। लेकिन भाई ईमानदारी से, प्रेम से, अनुराग से, श्रद्धा से, निष्ठा से एक निवेदन करना चाहूंगा कि संसार के लोग आपको आजमाएंगे, लेकिन जब आजमाने की आपकी बारी आएगी तो सब तब तुम देखोगे कि तुम बिल्कुल अकेले खड़े हो, कि पूरी भीड़ में अकेले हो, कि दुनिया में कोई नहीं। आपने कई बार देखा होगा कि संकट के समय आप कहते हैं, आप बोलते हैं स्वामी जी आज अकेलेपन का एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन अकेले आप तब भी थे, मान नहीं रहे थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे कि तब आपको भरोसा था कि सारी भीड़ आपके साथ। भीड़ नहीं, भीड़ तो कम है, तब तो आप कहते थे कायनात साथ है, तब तो आप कहते थे कि दुनिया साथ है, कि दुनिया में क्या क्या आता है पता नहीं। हमको लगता था कि दुनिया हमारे घर की चार लोगों की दुनिया नहीं, सारी दुनिया हमारे साथ। हम विश्वास के साथ बोलते हैं, भरोसे के साथ बोलते हैं कि सारी दुनिया हमारे साथ है। लेकिन जरा घूम के देखो तो मालूम पड़ेगा दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है, तो कि तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुमसे कुछ हासिल होगा इसलिए तुम्हारे साथ, कि तुमसे कुछ मिलेगा, कि तुमसे कुछ स्वार्थ है इसलिए तुम्हारे साथ। और जहां उसे लगे कि नहीं नहीं ये किसी काम का नहीं है, वे ही जय जयकार करने वाले हाथ और पत्थर न मारने लगे तो नाम बदल देना, वे ही पत्थर मारेंगे कि जो अभी जय के लिए हाथ उठे थे, वे ही निंदा करेंगे जो स्तुति कर रहे थे, जो गीत गा रहे थे, वो गालियां देंगे। बदलने में समय नहीं लगेगा, छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। मीरा के विवाह के समय पर जो गीत गा रहे थे, मीरा के विवाह के समय पर जो नाच रहे थे, मीरा के विवाह के समय पर जो खुश थे, प्रसन्न थे, और वो नहीं, हाथ में पत्थर लेने में टाइम नहीं लगा, कि वो नहीं, गालियां देने में समय नहीं लगा, खत्म। दृश्य वही पलक झपते यहां वहां सब बदल जाए, भरोसा नहीं कि कब बदल जाए। मीरा को जरा समय लगा। मैं कई बार सोचता हूं, मीरा जैसी महिला, मीरा द्रौपदी जैसी महिला, द्रौपदी कि भगवान के ऊपर भरोसा बाद में, पहले दुनिया के ऊपर किया। कई बार सोचता हूं, द्रौपदी को पता नहीं था कि सारे लोग कैसे, कि द्रौपदी को सोचना चाहिए था कि पितामह भीष्म को बोलना होता तो द्रौपदी को महल से खींच करके लाने से पहले ही बोल देते। लेकिन हम अंत तक प्रतीक्षा करते हैं, अब नहीं, शायद अब कहेंगे, कि अब नहीं, शायद अब कुछ होगा, कि अंतिम सांस तक प्रतीक्षा करते हैं कि अब। कमाल है, संसार के ऊपर इतना भरोसा कि अंतिम क्षण तक विश्वास करते हो कि श्वास जब तक है तब तक शायद डॉक्टर साहब चमत्कार कर दें। डॉक्टर साहब उनके वश का है, जरा सोचो, सोचो जरा, थोड़ा तो सोचो कि अगर उनके वश का होता तो वो तो किसी को मरने ही ना देते। इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती, इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर डॉक्टर के हाथ में होती चीज, कि डॉक्टर के हाथ में होता जीवन, तो वो तो किसी को न मरने देता। लेकिन हम क्या कहते हैं, शायद डॉक्टर साहब कोई चमत्कार कर दें। चमत्कार डॉक्टर करेगा? चमत्कार डॉक्टर करेगा नहीं, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं, कि हम फिर भी भरोसा करते हैं, शायद द्रौपदी और कुछ नहीं कर रही है, द्रौपदी हमारी वृत्ति का अभिनय कर रही है, द्रौपदी और कुछ नहीं कर रही है, द्रौपदी हमारी सोच की प्रतिकृति कर रही है। कि जैसे हम जीवन के अंतिम क्षण तक भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि शायद अब बेहतर होगा, शायद अब कुछ होगा, शायद ये, शायद ये आशा, ये संभावना, ये होने की चीज आपको जिंदा रखे हुए कि कल बेहतर होगा। और कल रोज आता है, कल रोज गुजरता है, और कल के रोज आने की संभावना बनी रहती। ये बड़ा बढ़िया शब्द चुना है, कल, बहुत अच्छा, कि जो गुजर गया वो भी कल था, जो आने वाला है। बोलो, अरे हाँ, आज मैं सुनाए जा रहा हूं, आपसे कुछ पूछा ही नहीं मैंने। आज जाने के जोश में वो लगता है ना? बढ़िया शब्द है कि जो गुजर गया वो भी कल, और जो आने वाला है वो भी कल। लेकिन बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है कि हम कल में ही जीते हैं, आज को भूलकर, या तो गुजरे हुए कल में, या तो गुजरे हुए कल का अफसोस, दुख है, पीड़ा है, या फिर कल के आने की प्रतीक्षा, और आज को खो रहे हैं, आज को समाप्त कर रहे हैं। तो कल बेहतर होगा प्रतीक्षा में हम विश्वास किए जा रहे हैं, और कल रोज गुजरता जा रहा है, कि जो आज है ये भी कल होने वाला है, और जो कल आएगा वो फिर भी कल होगा। लेकिन हम सोचते हैं कल, मैं कई बार सोचता हूं, मैं सोचता था कल बेहतर होगा, कल अच्छा होगा। और आपको पता है, पता है, मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करता हूं, और बिंदास होकर शेयर करता हूं, कि जब मुझे पता चला कि मैं 36 वर्ष का हो गया, तब मालूम पड़ा कि कल की कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है। 36 वर्ष चले गए ये कल कल करते, कमाल की बात। आपको तो ज्यादा सोचना चाहिए, आपको तो अधिक सोचने की जरूरत है, कि कल कल करते 60 वर्ष निकल गए, कि 50 वर्ष निकल गए, कि 70 वर्ष निकल गए, और क्या बात हुई, कल की ही तो बात थी, कल ही तो था, कि कल की ही तो दुनिया थी, कि कल का ही तो संसार था, कल का, जरा घूम के देखो तो पूरी कहानी नजर आएगी कि देश आजाद नहीं हुआ था और तब परमात्मा ने तुमको आजाद कर दिया था, कि देश आजाद नहीं हुआ था तब जीव को आजादी मिलने के लिए रास्ता बन गया था, कि तब इस पृथ्वी पर आ गए थे, कि इस देश में आ गए थे। अब क्या कहूं कि देश को भी आजाद होने का भ्रम है और हमें भी आजाद होने का भ्रम है, कि देश को भी लगता है कि आजाद हो गए और कि मनुष्य बनने के बाद हमें भी लगता है कि आजाद हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कि देश के हमारे लीडर भी वही सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, कि देश को बर्बाद कर रहे हैं, और मनुष्य बनकर के हम भी यही कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, किए जाओ। लेकिन आने वाली पीढ़ी न इस देश के लीडर को माफ करेगी न हमें माफ करेगी, ध्यान रखना। तो कल की फिक्र नहीं, नहीं कल की प्रतीक्षा नहीं, समझना इस बात को, कल की फिक्र भी नहीं और कल की प्रतीक्षा भी नहीं, मैं दोनों ही चीजों का विरोधी हूं। न प्रतीक्षा में विश्वास है न चिंता में विश्वास है, चिंता तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और प्रतीक्षा भी नहीं। जो है आज हमारी आध्यात्मिक लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आध्यात्मिक चिंतन को करने के लिए वो कल्प टालते हैं, कि कैसा लगा प्रवचन, बहुत बढ़िया, कि कुछ करने वाले हो, सोचते हैं, जरा सोचेंगे, अच्छा कब सोचोगे, फुर्सत तो मिले, बताओ सोचने की ही फुर्सत नहीं है तो करने की कहां से होगी, अजीब है, विचित्र बात है, कि कहीं जाना है, जी कहां जाना, अहमदाबाद जाना है, तो कब निकल रहे हो, सोचेंगे, बैठे रहो, सोचते रहो, कि आपने सारी तैयारियां कर ली, सारी तैयारियां। मैंने सुना है कि एक लड़के से पूछा कि परीक्षाएं आ रही हैं, एग्जाम आ रहे हैं, तैयारियां हुई, बोले सारी तैयारियां, कि पेन की स्याही भी देख ली, कि नोटबुक भी चेक कर ली, कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक पेपर रख करके जिस पे लिखते हैं पैड, बोले वो भी तैयार, ड्रेस भी ठीक है, अच्छी तरह से देख लिया, चेक किया, जूते भी पॉलिश किए हैं, सब कर लिया, सब तैयार है, एकदम तैयारी है, परफेक्ट तैयारी है, बस पढ़ना बाकी है, कि जो लिखना है वो बाकी है। हम भी ऐसी तैयार हैं कि सारी ट्रेनों की जानकारी है, कि कौन सी कब जाने वाली है, टाइम भी याद है, कई लोगों को बड़ा याद रहता है कि अहमदाबाद जाना है, हां हां कर्णावती जाती है ना, आप गए, गया तो नहीं, पता है, मालूम है, सारी जानकारी है, तो सारी चीजें हमने रखी। अच्छा कर्णावती अहमदाबाद ही जाती है कि कहीं और जाती है, मुझे पता नहीं, हाँ सारी तैयारी, लेकिन यात्रा यात्रा नहीं शुरू हुई, कि सब तैयार है। मैंने कई लोगों को देखा है कि तैयारी करते हैं यात्रा के लिए, जाते हैं तो साथ में कुछ खाने पीने को, बड़ी चिंता होती है कि पहले वो बनना चाहिए, वो बनाते हैं, वो भी तैयार है, लेकिन यात्रा शुरू नहीं हुई। तो मैंने कहा कि तुमने बना के तैयार कर लिया फिर भी यात्रा नहीं, तो कोई बात नहीं, घर में ही खाने के काम आएगा, शुरू नहीं की यात्रा, शुरू नहीं। और मेरा जोर यह है कि तुम भले ही खाने की चीजें न बनाओ, वो रास्ते में मिली ही जाएंगी। मेरा जोर यह है कि भले ही कुछ और जानकारी न हो, स्टेशन पर पहुंचो, ट्रेन का पता चल ही जाएगा। कि तुम सोचते हो कि पहले हो, और मैं कहता हूं कि यात्रा शुरू हो, कि थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी, लेकिन वहां पहुंचे तो सफर शुरू होगा, कि कोई ना कोई ट्रेन होगी, कोई ना कोई तो साधन मिलेगा, और आप घर में ही बैठे रहे तो सारी जानकारियां मिलने के बाद में भी सफर शुरू नहीं होगा, ये निश्चित है, ये कन्फर्म है। इसलिए मेरा निवेदन हमेशा और सदा से है, सदा रहेगा, कि सफर शुरू हो, कि यात्रा आरंभ हो, कि कैसे भी हो, चलो जरा थोड़ा थोड़ा सा चलो। कि आपको ट्रेन से असुविधा है तो बस से चलो, बस से असुविधा है तो टैक्सी से चलो, टैक्सी से असुविधा है तो फ्लाइट से जाओ। और मैं बहुत भयानक आदमी हूं इस मामले में कि अगर कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है तो अपने पैरों से चलो, लेकिन यात्रा शुरू हो। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने अहमदाबाद जाने के लिए भी पैरों से भी यात्रा शुरू कर दी तो कोई ना कोई रास्ते में जरूर मिलेगा जो कहेगा कि आओ और मेरे साथ बैठो, हम तुम्हें लेके चलते हैं। अगर तुम चल रहे हो, चलते हुए आदमी को देख करके कहने वाला मिल सकता है कि तुम कहां चल रहे हो, हाईवे पर और पैदल, यहां तो पैदल जाने की संभावना ही नहीं है, कैसे पैदल चल रहे हो। और आपने कहा कि इसलिए चल रहे हैं कि कोई साधन नहीं मिला, तो जरूर उसको दया आएगी और वो कहेगा कि मेरे साथ आओ, मेरे पास में बैठो। ध्यान रखना, आध्यात्मिक पथ पर हाथ पकड़ करके आगे ले जाने वालों की भी तब कमी नहीं है जब आप सफर शुरू कर देते हैं, कि जब आप यात्रा शुरू कर देते हैं। घर में बैठे बैठे आप सोचो कि कोई आए और आपको लेकर के चले, हाईवे से चलने वाला व्यक्ति कभी तुम्हारे घर से तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। आएगा, बोलो, आखिरी बार बोल दो, आज फिर जा रहा हूं। कोई आएगा कि हाईवे पर चलने वाला व्यक्ति तुम्हारे घर पर आएगा कि तुमको जाना है क्या, आओ मेरा हाथ पकड़ो मैं लेके चलता हूं? कोई नहीं आएगा। और ध्यान रखना, घर में बैठ करके अगर आपने किसी को बुलाया भी तो सुनेगा भी नहीं, आने की तो छोड़ दो। लेकिन अगर तुमने सफर तय किया कि थोड़ा चलना पड़ेगा, कि थोड़ा चलना पड़ेगा, तय किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि गाड़ी लेकर के बिठाने वाले कम नहीं है। और भाई, मैं ज्यादा बोलता हूं इसलिए बोल ही देता हूं, अच्छा लगे बुरा लगे। और भाई, तुम रास्ते में चलो, कोई आए ना आए लेकिन चिदम्बरानंद की गाड़ी जरूर मिलेगी और वो तुमको जरूर कहेगा कि आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। सदगुरुदेव भगवान की जय।